समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले।
करता हूँ भारत माता से गुजारिश हमेशा यही कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी कभी ना मिले। करता हूँ भारत माता से गुजारिश हमेशा यही कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी कभी ना मिले। हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरती पर, या फिर कभी मुझे जिंदगी ही ना मिले। आज 26 जुलाई है, यानी करगिल विजय दिवस। तो करगिल विजय दिवस पर सभी शहीदों को दिल से नमन। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में आज से 26 वर्ष पहले भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 के ही दिन नियंत्रण रेखा से लगी करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए आतंकियों और उनके वेश में घुसाए पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया था। पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरा युद्ध ही था जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जवान शहीद हुए थे। इन वीर और जाबाज जवानों को पूरा देश आज ही के दिन यानी 26 जुलाई के दिन याद करता है और श्रद्धा पूर्वक नमन करता है।
Well, yes, listeners, on 26 July, the tricolor once again soared proudly over the rugged mountains of Ladakh, a symbol of sacrifice, valor, and an unbreakable national spirit. Well, the nation comes together this year to observe the Kargil Vijay Divas, a day that shines like a beacon of pride in India's history. It marks the glorious victory of 1999. When our soldiers, braving snow-clad peaks and relentless enemy fire, reclaimed the heights of Kargil with unmatched courage and unwavering resolve.
कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें।
करगिल युद्ध, जो कि करगिल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के करगिल जिले से शुरू हुआ था। इस युद्ध का महत्वपूर्ण कारण था बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों और पाक समर्थित आतंकवादियों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर घुसाना।
Well, yes, as Ravi is saying, this anniversary is not just a date on the calendar, it is a stirring reminder of the grit and unity that defines our nation. It is a salute to the men who fought for us in freezing winds, turning every peak into a testament of their bravery. Well, Kargil Vijay Divas is more than an occasion of remembrance. It is a pledge to honor the legacy of those who gave everything for the motherland.
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू,
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू,
वतन मेरे वतन।
दुश्मन का उद्देश्य था कि कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना। पूरे 2 महीने से भी अधिक समय तक चले इस युद्ध में भारतीय थलसेना और वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे आक्रमणकारियों को मार भगाया था। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जाता है।
Well, yes, listeners, today as we pay homage to the heroes of 1999, we reaffirm a timeless truth. India's unity and sovereignty will forever remain unviable. Under Operation Vijay, our army, supported by the Air Force, launched a meticulously planned and executed counter-offensive. Tales of extraordinary valor emerged from every peak and every ridge. We remember heroes like Captain Vikram Batra, whose battle cry, Ye Dil Mange More, echoed across the mountains.
Our radio said, and one of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me, my code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge, and my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success can allow us, ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more monkeys should have been there and we would have got the more chaps.
Well, yes, you were listening to that boy's Lieutenant Manoj Kumar Pandey also, who led from the front with unparalleled bravery, and Grenadier Yogendra Singh Yadav, who displayed incredible fortitude. These are, listeners, but a few names among the hundreds who made the supreme sacrifice, laying down their lives to protect our sovereignty and our honor.
अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान.
वेल, फिलहाल एक नई और खूबसूरत सुबह में समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे के साथ आकाशवाणी स्टूडियो में अपने श्रोताओं से मुखातिब हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा. स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार.
वेल यस, नमस्कार लिसनर्स. वी आर ऑफ टू अ वंडरफुल स्टार्ट टू आवर प्रोग्राम टुडे. फर्स्ट लिसनर्स, वी विल गिव यू द न्यूज, ऑल्सो वील प्रोवाइड यू आर मेट्रो सिटी अपडेट्स, योर मेट्रो सिटी अपडेट्स, एंड वील एक्सप्लोर टुडेज हिस्ट्री. टुडे, एज रवि सेड ऑल्सो इन द बिगिनिंग, टुडे इट्स 26th ऑफ जुलाई. फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस.
जी बिल्कुल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे. श्री मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के विशेष आमंत्रण पर मालदीव की राजकीय यात्रा पर हैं. कल श्री मोइजू ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया था. इस अवसर पर श्री मोइजू ने श्री मोदी को भारत का दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी. श्री मोइजू ने श्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध बने रहेंगे. श्री मोइजू ने कहा कि भारत लंबे समय से मालदीव का निकटतम और सबसे भरोसेमंद मित्र देश रहा है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग है.
मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आना मेरे लिए सम्मान की बात है. मैं इस निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी भारतवासियों की ओर से मालदीव के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. इस वर्ष भारत मालदीव संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं. हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं. जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है.
India signed 6 memoranda of understanding with the Maldives to enhance cooperation across multiple sectors following wide-ranging talks between Prime Minister Narendra Modi and Maldives President Mohamed Muizu at the President's office in Malé yesterday. The key areas include fisheries and aquaculture, meteorology, digital public infrastructure, UPI and concessional line of credit. India announced a new line of credit of 4,850 crore rupees to support the infrastructure development and other activities in the island nation. Prime Minister Modi said that mutual cooperation in defence and security reflects the mutual trust between the nations.
मालदीव की रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा. हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है.
गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़े आतंकियों और तस्करों को वापस लाने के लिए विशेष उपाय करने के निर्देश दिए हैं. कल नई दिल्ली में 2 दिन के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में उन्होंने केंद्र और राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने और देश के भीतर पनप रहे आतंकी तंत्र से सख्ती से निपटने पर जोर दिया. श्री शाह ने आतंकियों द्वारा एनक्रिप्टेड संदेश के दुरुपयोग का समाधान ढूंढने के लिए सभी पक्षों को मिलकर प्रयास करने का अनुरोध किया. उन्होंने ये सुनिश्चित करने को भी कहा कि पुलिस संगठनों में केवल स्वदेशी तकनीक का ही उपयोग हो. कल इस सम्मेलन के पहले दिन नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त विदेशी शक्तियों के तार घरेलू संपर्कों से जुड़े होने और आतंकवादियों के धन के स्रोतों पर भी चर्चा हुई. सम्मेलन में देश भर के लगभग 800 अधिकारियों ने भाग लिया. आज इस सम्मेलन के दूसरे दिन नागर विमानन, बंदरगाह सुरक्षा और वामपंथी उग्रवाद पर भी चर्चा होगी.
Prime Minister Narendra Modi yesterday virtually inaugurated road and drainage system project in Adu city of Maldives. The project includes 111 kilometer of roads, 106 kilometer of drainage works and 160 kilometer of street lighting. India's Exim Bank has provided a line of credit for this project and works are carried out by the Afghans Infrastructure Limited. In an exclusive interview with Akashwani News, Afghans Infrastructure Limited's Executive Vice President, Mr. Krishnamurthy, said, executing the project was an engineering feat. He added that inaccessible areas limited their use of heavy machinery, so they innovated with custom-built lifting solutions, including wheeled lifters.
केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या 8 करोड़ को पार कर गई है। 10 साल पहले शुरू हुई यह योजना भारत सरकार की अग्रणी सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह देश के सभी नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है।
Prime Minister Narendra Modi will be on a two-day visit to Tamil Nadu starting today. After completing his two-nation tour to the UK and Maldives, Mr. Modi will travel directly to Tuticorin. The Prime Minister will inaugurate Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of various development projects worth over 4,800 crore rupees at Tuticorin tonight. Our correspondent has more details.
Security has been tightened around Tuticorin in view of the Prime Minister's visit. He will inaugurate the upgraded and modernized airport at Thoothukudi, which has an impressive entrance which brings back the memories of the ancient pearl diving practice and a fisherman in a boat model objectifying the rich marine resources. The project will enhance regional connectivity, boost logistics efficiency, strengthen clean energy infrastructure and improve the quality of life for citizens across the southern part of the state. It is to be noted that to build a strong maritime system, the Union Government has created a maritime development fund with rupees 25,000 crore to foster private sector participation and expand maritime infrastructure, which is a step towards building Atmanirbhar Bharat. Joy, Akashwani reporting from Thoothukudi.
Listeners, now let's give you the sports updates. First, squash. India's Anahat Singh scripted history at the World Junior Championships 2025 in Cairo, Egypt, claiming a bronze medal in the women's singles event, the country's first in 15 years. So this was an achievement.
Anderson Tendulkar Trophy ke chauthe cricket test match ke chauthe din, England aaj Bharat ke saath apni pehli pari mein 7 wicket par 544 run se aage khelega. Kal teesre din mezban team 186 run se aage thi. बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन क्रीज पर थे। भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए थे। फिलहाल भारत 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-2 से पीछे है। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शगुन चोपड़ा।
यस रवि, आई विल बिगिन विद चेन्नई. Central Leather Research Institute, the story is updated, this is about that, at the Chennai, organized the One Day as Scientist program for the entire week. This was held in tune with the Prime Minister's recent suggestion that children may be allowed to spend one day as a scientist to foster curiosity about science during his 119th episode of Mann Ki Baat. At least 75 students participated each day, and a total of around 380 students, they attended the program. This was about one day as a scientist. Our next update, it is from Bengaluru, and this is about Krishna Janmashtami, the festival, the Mandalotsav, the Sri Krishna Janmashtami Mandalotsav. The governor of Karnataka, Thavarchand Gehlot, was part of the inaugural ceremony of Sri Krishna Janmashtami Mandalotsav at the sacred Sri Krishna Math in Udupi yesterday.
Shri Krishna Govind Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva.
Well, yes. Speaking on this occasion, he said, if we deeply understand the essence of Shri Krishna's message, it becomes a path not only to uphold righteousness, but also to achieve success in life. The universal relevance of teachings of Lord Shri Krishna serve as a guiding light to balance karma, dharma, bhakti, jan and seva. The governor emphasized that Shri Krishna's teaching becomes a path to uphold righteousness, Lauding the global recognition of Mutt's spiritual legacy, the governor said, Sri Suganendra Theerth Swamiji of the Puttige Mutt has made enormous efforts to spread the essence of Sanatan Dharma in USA, in Canada and Australia and helped in building a cultural spiritual bridge. Well, now we are heading to Hyderabad, listeners. Telangana State IT Minister D. Sridhar Babu yesterday said that Telangana government will collaborate with Estonia country, globally recognized as a pioneer in digital governance and healthcare digitization, to strengthen e-governance and digital public service delivery. So, Ravi, these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now we are moving and heading to Delhi, Mumbai and Kolkata.
Ji, bilkul. करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने कल सशस्त्र बलों के करगिल वीरों को सम्मानित किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने कल न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन पर एक करगिल विजय दिवस स्मारक जोन का उद्घाटन किया। इस जोन में विषम तापमान और दुर्गम पहाड़ियों के बीच भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण सैन्य अभियानों में से एक करगिल में लड़ने वाले वीरों और उनके शौर्य और पराक्रम को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लगातार कार्यकाल 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि देशवासियों के विश्वास, समर्थन और लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने 26 मई 2014 को देश की बागडोर संभाली थी और तब से अब तक लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है बल्कि यह हर उस भारतीय की खुशी और गर्व का पल है जो लोकतंत्र, स्थिरता और प्रगति में विश्वास रखता है। बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र में मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने शुक्रवार को मछली आहार खरीद के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की। मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने कहा कि नए निर्देश मत्स्य पालन परियोजनाओं की दक्षता बढ़ाने और स्थानीय चारा उत्पादकों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं। मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा है कि पहले से ही भारी बारिश से जूझ रही मुंबई में सप्ताह के अंत में और भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम एजेंसी ने आज और कल के लिए आर्थिक राजधानी और पड़ोसी ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के बीच मुंबई पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो वे घर के अंदर ही रहें।
Well, yes, there is one more update that I would like to add there. I may add, Principal Secretary to the Prime Minister, P.K. Mishra, has said the government is planning to open up the atomic energy sector like the space sector. Mr. Mishra, he was addressing the 68th batch of scientific officers at the Bhabha Atomic Research Center Training School in Mumbai yesterday. He said timely completion, access to low-cost finance and leveraging private sector capabilities are key to lowering tariffs and improve feasibility of nuclear projects. Mr. Mishra, he also encouraged researchers to innovate in cost reduction strategies to make nuclear energy India's preferred power source. So I added that there.
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अब बढ़ते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए कल कोलकाता में एक कार्यशाला का आयोजन किया। राज्य सरकार के लोक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग ने इस कार्यशाला का आयोजन किया जिसका उद्घाटन राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित और जागरूक करना था। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश जो है वो गरज के साथ बारिश आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वैसे शगुन, आज जब मैं आकाशवाणी आ रहा था अर्ली मॉर्निंग तो पहले से ही देखा बारिश खूब आई हुई है।
राइट,
सड़कें जो हैं वो
बिल्कुल गीली थीं। Yes, rightly observed, and I think there will be more rains at other spots as well, right? During the day weekend.
और मुंबई के मौसम की बात करें तो हम पहले ही अपने श्रोताओं को जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहने और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Now talking about Bengaluru, it is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Talking about Hyderabad, again it is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between minimum of 23 degrees and maximum of 27 degrees there.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ था। शगुन,
Yes, we are taking you listeners way back in time. In the year 1835, first sugarcane plantation was started in Hawaii. In 1938, first radio broadcast of young Widder Brown was telecasted on NBC.
और 1998 में आज के दिन महानतम महिला एथलीट जैकी जायनर कर्सी ने एथलेटिक्स से संन्यास लिया। सन 2002 में आज के दिन इंडोनेशिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो के पुत्र को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। और सन 2002 में ही आज के दिन प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई। 2004 में आज के दिन अर्जेंटीना को हराकर फुटबॉल का कोका कप ब्राजील ने जीता। 2005 में आज के दिन नासा शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण हुआ।
In 2005, again adding there, Mumbai received 99.5 centimeter of rain within 24 hours, bringing the city to a halt for over 2 days. This was on this day.
जी, और 2006 में आज के दिन लेबनान में इजराइल हमले में 4 संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक मारे गए। और 2008 में आज के दिन यूरोपीय वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर एक और नए ग्रह की खोज की। और अब समय हो गया है शगुन अपने श्रोताओं को कुछ विशेष महानुभावों के पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में जानकारी देने का।
Surely.
तो पुण्यतिथियों के क्रम में आज सबसे पहला नाम है भारत के प्रसिद्ध विद्वानों में से एक रहे वासुदेव शरण अग्रवाल का, जिनका जन्म हुआ 7 अगस्त 1904 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में और निधन 26 जुलाई 1966 को। वे भारत के इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य और प्राच्य विद्या आदि विषयों के विशेषज्ञ थे। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी विश्वकोश संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने मथुरा संग्रहालय के संग्रहाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पाणी निकालीन भारतवर्ष में भारत की संस्कृति, कला और साहित्य आदि पर प्रकाश डाला गया है। उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। और यही नहीं शगुन, वासुदेव शरण अग्रवाल ने मथुरा संग्रहालय में संग्रहाध्यक्ष के रूप में जो अपनी सेवाएं प्रदान की थी, उनके द्वारा लिखी गई मुख्य रचनाओं में शामिल हैं पाणी निकालीन भारतवर्ष, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत और हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन आदि।
Well, listeners, today we are also remembering Madhusudan Kanungu, scientist in the field of neuroscience, and he has been a teacher of molecular biology and biochemistry as well. He is known for his theories on how gene expression, it changes with age, and the role of this phenomenon is aging, which is a widely accepted gene expression theory of aging. And in recognition of his contribution, listeners, he has been awarded with Padma Shri, and this was in the year 2005. He has been able to identify the changes in the qualitative nature of enzymes, their modulation by various regulators as well.
और अब जिक्र उबैद सिद्दीकी का, जिनका जन्म हुआ 7 जनवरी 1932 और निधन 26 जुलाई 2013 को। उबैद सिद्दीकी भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा सन 1984 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। न्यूरोजेनेटिक्स के क्षेत्र में उबैद सिद्दीकी के अध्ययन ने जीन व्यवहार और मस्तिष्क के बीच की कड़ी को उजागर किया। यानी शगुन, न्यूरोजेनेटिक्स में उबैद सिद्दीकी के काम ने ये समझने में मूलभूत प्रगति की कि कैसे स्वाद और गंध का पता लगाया जाता है और मस्तिष्क में एनकोड किया जाता है। और जहां तक उनको मिले पुरस्कारों और सम्मानों की बात है तो उबैद सिद्दीकी को जिन सम्मानों से सम्मानित किया गया उनमें शामिल हैं भटनागर पुरस्कार 1976 में, पद्म भूषण 1984 में, डॉक्टर बी सी राय पुरस्कार 2004 में, बिरला स्मारक कोष राष्ट्रीय पुरस्कार 1989 में, गोयल पुरस्कार 1991 में, इंसा आर्यभट्ट पदक 1992 में, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड AFMI USA 2004 में, पद्म विभूषण 2006 में और सर सैयद अहमद खान इंटरनेशनल अवार्ड फॉर लाइफ साइंसेज 2009 में।
वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इकोनॉमिस्ट जगदीश नटवरलाल भगवती। टुडे इट्स हिज बर्थडे। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेड थियरिस्ट ऑफ हिज जनरेशन द ट्रेड थियरिस्ट। He is a university professor of economics and law at Columbia University. He has made significant contributions, listeners, to international trade theory and also economic development.
जी, और अब जयंतियों की ओर चलते हैं। जयंतियों में आज सबसे पहला नाम है छत्रपति साहू महाराज का, जिन्हें भारत में सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता था। आपका जन्म हुआ 26 जुलाई 1874 और आपने इस दुनिया से विदा ली 10 मई 1922 मुंबई में। वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। छत्रपति साहू महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने के आदेश दिए। और यही नहीं शगुन
जी,
साहू महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में भी, उनके समर्थन में भी आवाज उठाई थी।
Fascinating it is to know that there. Today, listeners, it's also a musician's birthday. Let me talk about him now. Roger Taylor. Well, he has been a drummer, listeners, and he has been a vocalist for the rock band Queen. I have chosen a very, very inspirational song. This is We Are the Champions.
कार्यक्रम का अंतिम चरण आ चुका है। चलते चलते आज का विचार कि दूसरों को बदलने की कोशिश से बेहतर है खुद को बदलना। लेकिन उससे पहले अपने श्रोताओं को एक जानकारी दे दें कि आज लद्दाख में करगिल विजय के जो हमारे शहीद हैं उनके स्मरण में एक पदयात्रा का आयोजन किया गया है उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से।
Well, yes, in Ladakh, as part of the 26th Kargil Vijay Divas celebrations, listeners, a massive Padyatra, which also Ravi is talking about, it was held in Dras this morning to honor the heroes of the 1999 Kargil War. Over 1,000 youth, war veterans, armed forces personnel, families of martyrs and members of civil society, they participated in the patriotic tribute walk. The Padyatra was led by Union Minister for Youth Affairs and Sports and Labour Employment, Dr. Mansukh Mandaviya, and Minister of State for Defence, Sanjay Seth. Well, yes, Kargil Vijay Divas celebrations will begin at the Kargil War Memorial in Dras this morning with the arrival of military and civilian dignitaries, followed by a solemn wreath-laying ceremony to honor the brave soldiers who laid down their lives during the 1999 Kargil War.
तो इसी के साथ समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे संपन्न करने की रवि कपूर और शगुन चोपड़ा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।